आज आप लोग यहाँ पर छह गोस्वामियों के दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर में नियम है कि छह गोस्वामियों में से किसी भी एक गोस्वामी का अगर तिरोभाव या आविर्भाव होता है तो पूरे दिन में छह गोस्वामियों के दर्शन कराए जाते हैं। तो आज छह गोस्वामियों में से गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है, उस उपलक्ष्य में छह गोस्वामियों के दर्शन कराए जा रहे हैं। और इस दिन छह गोस्वामियों की पुष्पांजलि भी होती है और उनकी आरती भी की जाती है। छह गोस्वामियों के नाम इतने शक्तिशाली हैं कि अगर कोई नाम का ही स्मरण करे तो उसके सभी विघ्न दूर होते हैं। उनके नाम को याद करने के लिए संस्कृत में एक पंक्ति है, वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को। तो दो दो की जोड़ी में जो तीन जोड़ियां हैं इनसे छह नाम हो जाते हैं। तो पहली जोड़ी है रूप सनातनो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की, वंदे रूप सनातनो। फिर दूसरी जोड़ी है रघु युगो, रघु युगो का मतलब है दो रघु हैं, एक रघुनाथ दास गोस्वामी और दूसरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघु युगो। फिर तीसरी जोड़ी है श्री जीव गोपाल को, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो एक पंक्ति में ये छह नाम आते हैं और बंगाली जो भजन है उसमें भी ये छह नाम आते हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। यही छह गोसाई करी चरण बंदन, और क्या है,
जहाँ हैते विघ्ननाश,
जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। यही छह गोसाई करी चरण बंदन, इन छह गोस्वामियों की अगर चरणों की वंदना की जाए तो क्या है,
सब
यही छह गोसाई करी चरण बंदन,
जहाँ
हैते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण, विघ्न नाश होते हैं, अभिष्ट की पूर्ति होती है। तो छह गोस्वामी, ये वृंदावन के छह गोस्वामी हैं बताए जाते हैं। तो हमारे गौड़ी संप्रदाय में इन छह गोस्वामियों को बहुत बड़ा महत्व है। इन छह गोस्वामी ने त्यक्त्वा तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणी पिछड़ा पिछड़ तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो पद थे, जो बहुत सम्मानित पद थे उनको त्याग करके इन्होंने क्या किया है, तुच्छवत एक तुच्छ स्थिति स्वीकार की, अपने जीवन को जो है मतलब बहुत ही सरल बनाया और विरक्त बनाया, विरक्ति की पराकाष्ठा इन छह गोस्वामियों के जीवन में विरक्ति की पराकाष्ठा मिलती है ना। तो प्रभुपाद ने भी कहा कि वृंदावन के अभी जो छह गोस्वामी हैं, छह गोस्वामी नहीं, गोस्वामी नाम से जो जाने जाते हैं, तो इन गोस्वामियों की तुलना में वे गोस्वामी तो बंदर जैसे ही हैं, कुछ भी मतलब तुलना नहीं है। जो अभी तो आजकल गोस्वामी जाति बन गई है, अब तो जाति की गोस्वामी की, जो गोस्वामी का लड़का है वो भी गोस्वामी, उनका लड़का गोस्वामी, वो जात बन गई थी गोस्वामी। लेकिन वास्तव में जो गोस्वामी है जाति नहीं होती है बल्कि एक उपाधि होती है। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है या कोई जो है डॉक्टरेट या पीएचडी कर लेता है, मास्टर्स डिग्री प्राप्त करता है, तो ये कोई जाति थोड़ी होती है। किसी ने एमए की डिग्री पाई है तो थोड़ी कि एमए की डिग्री जिसने पाई है उसका लड़का भी अपने आप एमए कहलाएगा, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर कहलाएगा, वकील का लड़का वकील कहलाएगा, ऐसा तो नहीं है। आजकल जो है कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि गोस्वामी भी जो है जाति बन गई। ये जो गोस्वामी है ये बहुत ऊंचे धरातल पर है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के जो प्रेम के जो तरंगे हैं, कल्लोल मग्नोम हो, राधा कृष्ण की जो तरंगे प्रेम की तरंगे हैं उनमें जो है जो डूबते हैं, डूबे रहते हैं, ऐसे जो है वृंदावन के छह गोस्वामी हैं। और उनमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनका जागरण भाव दिवस है, इनका बहुत बड़ा योगदान जो हमारे गौड़ीय समाज में है वो राधा रमण जी की प्राप्ति है। राधा रमण जी, जैसा प्रभु जी ने बताया कि इनके जो अर्चा विग्रह हैं दामोदर शिला से प्रकट हुए थे। हरि बोल, बातें नहीं, बातें नहीं, ये कौन बातें कर रहा है? अपने बच्चों को संभालिए, बातें नहीं करेंगे, या तो बच्चों को बाहर ले जाइए, बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, दामोदर शिला
से,
दामोदर शिला से राधा रमण कैसे प्रकट हुए, तो बड़ी रोमांचकारी घटना है कि वृंदावन में कोई धनी व्यक्ति था जो कि वस्त्र आभूषण सब मंदिरों में दे रहा था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी उसने वस्त्र और आभूषण दिए, तो इन्होंने जो है ले तो लिए, लेकिन अब चिंता हो गई कि इनको जो है भगवान की सेवा में कैसे लगाए, है ना। जैसे प्रभुपाद ने कहा ना, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल, उपयोगिता ही सिद्धांत है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो उन्होंने जो है मतलब ले लिए, वस्त्राभूषण ले लिए, है ना। लेकिन अब ये तो जो है गोस्वामी है, ये थोड़ी कुछ भोगेंगे कि वस्त्राभूषण बेच दो और अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाओ, ऐसा नहीं है। अब वस्त्राभूषण इनको प्राप्त हुए तो इनको चिंता हुई कि मेरे तो भगवान शालिग्राम है, अब शालिग्राम कैसे वस्त्राभूषण धारण करेंगे, हैं। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, तो उनके दिमाग में एक विचार बार बार आता था कि भगवान जो है अगर नरसिंह चतुर्दशी के दिन खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तो मेरे शालिग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते हैं, है। तो भगवान से रात भर रोते रो रो करके ही प्रार्थना करते रहे कि जब आप जो है एक खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए तो क्या मेरे शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो सकते, कि मेरे पास वस्त्र आभूषण हैं उनको धारण करने के लिए, है। तो रात भर रोते रहे और सवेरे जब देखा उन्होंने उठ करके तो दामोदर शिला से राधा रमण प्रकट हो गए।
हरी वो
कितना आश्चर्य है, मतलब आश्चर्य की पराकाष्ठा है ना। और सोचिए भगवान स्वयं अगर प्रकट हो तो फिर कितनी पूर्णता होगी उनके रूप में, है ना। क्योंकि भगवान के जितने अर्चा विग्रह हैं वो बनाए जाते हैं, है ना, और जो कारीगर लोग होते हैं वो अपनी पूरी कला उसमें कला कौशल लगा लेते हैं कि कितना सुंदर से सुंदर मूर्ति गढ़ें, लेकिन जब भगवान स्वयं प्रकट हो तो फिर तो कुछ अलग ही बात है। तो राधा रमण जी जो है जब प्रकट हुए तो करीब 8 इंच के होंगे शायद, 8 इंच के हैं करीब राधा रमण जी, है ना। तो उनका जो है जो शरीर का जो गठन है वो बिल्कुल पूर्ण मतलब भगवान का है, पूरे कृष्ण है। और उनके शरीर में जो है मतलब जैसे दांत होने चाहिए वैसे दांत भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे मुस्कुराहट में थोड़े से दांत आते हैं तो दांत भी हैं, तो किसी मूर्ति में ऐसे दांत नहीं हो सकते, लेकिन उनके दांत भी हैं। हाथों की रेखाएं भी जैसे भगवान कृष्ण होनी चाहिए, हाथों की रेखाएं हैं, पैरों की रेखाएं हैं, तो सब कुछ जो है उनका। और कमर जो है जैसे पतली कहा जाता है कि शेर की तरह पतली कमर, है ना, उसी प्रकार से जो है इनकी कमर जो है पतली है। और जो सीना है वो चौड़ा विशाल वक्षस्थल, उसी प्रकार से उनका जो है विशाल वक्षस्थल है। और जो मुखमंडल है जैसा सुंदर भगवान का होना चाहिए वैसा मुखमंडल सुंदर है। तो सब कुछ जो है उनका मतलब कृष्ण है, मतलब पूर्ण कृष्ण है राधा रमण जी। अभी राधा रमन जी अभी भी वृंदावन में है, जबकि वृंदावन के जितने भी अर्चा विग्रह थे औरंगजेब के समय पर उसके आक्रमण के भय से चले गए, जयपुर चले गए या कहीं करौली चले गए, अलग अलग स्थानों में चले गए, लेकिन राधा रमन जी वृंदावन में अभी मौजूद हैं। और कोई भी व्यक्ति इनका दर्शन करे और जब सोचता है तो फिर सोचता ही रहेगा कि कैसे मतलब भगवान जो है प्रकट हो गए। एक बहुत बड़ी चुनौती है नास्तिक व्यक्ति के लिए कि लोग सोचते हैं कि भाई ये तो मूर्ति है, तो पत्थर की मूर्ति है ना। तो यहाँ पर लोग आते हैं तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि तो पत्थर की मूर्ति है, मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, लेकिन जहाँ इनको देखे तो फिर जो है उसको सोचना पड़ता है कि भाई कुछ है ना, क्योंकि ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, तो स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। और जहाँ तक रामचंद्र के विराज की बात है, आज उनका 13 भाव दिवस है, तो उनकी विषय उनकी जो विशेषता है वो ये है, जैसे वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, इन्होंने तो जो है सब कुछ त्याग दिया, घर की संपत्ति और भोग सब भोगों को त्याग करके वृंदावन में आए और विरक्त का जीवन बिताया। रामचंद्र का विराज का जो जीवन है उसमें कुछ और विशेषता है कि पत्नी के साथ होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना और विशेषता है ना। तो ऐसे जो है कुछ 3 ऐसे महापुरुष हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनके नाम आते हैं। एक तो लोचनदास ठाकुर, वो भी अपनी पत्नी के साथ रहे और जीवन भर कभी सहवास नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। और रामचंद्र कविराज जिनका 13 भाव दिवस है, उन्होंने भी ऐसे किया। और तीसरे जयदेव गोस्वामी, और इनके आविर्भाव 13 भाव बहुत निकट आते हैं ना, तो पास पास ही आते हैं इनके तीनों के, रामचंद्र कविराज और जयदेव गोस्वामी और लोचनदास ठाकुर है ना, तीनों का है ना। तो इनकी ऐसी विशेषता है कि पत्नी के साथ रहते हुए भी कैसे हैं, ब्रह्मचारी के समान हैं है ना। तो ये और भी ज़्यादा विशेषता है। तो रामचंद्र कविराज जो है ये श्रीनिवासाचार्य के शिष्य हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवासाचार्य के गुरु हैं। तो ये भी पलाश्या मिलान है कि श्रीनिवासाचार्य के गुरु का आज आविर्भाव दिवस है और श्रीनिवासाचार्य के शिष्य का आज 13 भाव दिवस है। और नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में इन्होंने एक भजन उद्धृत किया था उनका लिखा हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास है ना, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास है। तो नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र का संग मांग रहे हैं और श्रीनिवास आचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर समान धरातल के हैं, अगर शिक्षा की दृष्टि देखा जाए तो ये दोनों जीव गोस्वामी के शिष्य हैं। शिक्षा की दृष्टि से 3 लोग जो है, 3 लोगों का एक बैच था जिन्होंने जीव गोस्वामी से शिक्षाएं प्राप्त की थी है ना, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और नहीं श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु, इन 3 लोगों ने जो है जीव गोस्वामी से शिक्षाएं प्राप्त की थी। तो इस दृष्टि से नरोत्तम दास ठाकुर के श्रीनिवास आचार्य बराबर धरातल पर हैं, लेकिन वे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, कि हे आचार्य श्रीनिवास मेरे ऊपर दया करिए, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मेरे ऊपर दया करिए। और क्या मांग रहा हूँ, आपके शिष्य की संगति मांग रहा हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर हालांकि बहुत सीनियर हैं और रामचंद्र कविराज उनके शिष्य के समान हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, मुझे रामचंद्र का संग चाहिए है ना। तो मतलब रामचंद्र कविराज का इतना मतलब विशेष प्रभाव है, ऐसा विशेष गुण है कि नरोत्तम दास ठाकुर संग मांग रहे हैं, तो फिर कौन उनका संग नहीं चाहेगा। आज जो है मतलब उनका 13 भाव दिवस है तो हम उनसे कृपा की याचना कर सकते हैं। गोपाल कंठ गोस्वामी की कृपा हमें लेनी चाहिए और रामचंद्र गजराज की कृपा हमें लेनी चाहिए, उनकी कृपा से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। श्री गोपाल कंठ गोस्वामी अगर भावतिथि महाभूत सब की, श्री रामचंद्र गजराज भावतिथि महाभूत सब की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर राम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद विष्णु देव। Thank you.